आत्म में निरत नित्य हितो उपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हे सयाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले दिनों अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपनी दृष्टि, अपने ज्ञान और अपने आचरण की निर्मलता पर विचार करना शुरू किया है। हम निरंतर अपने जीवन को अच्छा बनाने की बात पर विचार कर रहे हैं। दृष्टि और ज्ञान दोनों ही निर्मल हो जाने पर हमें अपने परिणामों की निर्मलता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। परिणामों की कलुषता से ही हमारे जीवन में पाप प्रवेश करते हैं। पाप तो कार्य रूप हैं, उसका कारण हमारे अंतरंग की कषाय भाव है। यदि हम अपने उन कषाय भावों को संभाल लेते हैं तो हमारे जीवन में हम पाप से मुक्त हो सकते हैं। हमारा अभिप्राय, जो भी हम क्रिया करते हैं, जो भी हम बोलते हैं और जैसा भी हम सोचते या विचार करते हैं, उस सब में महत्वपूर्ण हमारा अभिप्राय है। यदि अभिप्राय खोटा है तो हम जो भी हम बोलते हैं और जैसा भी हम सोचते या विचार करते हैं, उस सब में महत्वपूर्ण हमारा अभिप्राय है। यदि अभिप्राय खोटा है तो हमारी क्रिया, हमारा बोलना, हमारा सोचना, वो सब दूषित और कलुषित हो जाते हैं। तीनों से पाप होता है, मन से भी, वाणी से भी और शरीर से भी। भावों में दूसरे के घात करने का विचार आया, वह भी हिंसा है। वाणी में दूसरे के मारने का वचन हमने बोला, वो भी हिंसा है। ऐसा हो जाता है। और हमारी क्रिया में भी जो हम करते हैं उसमें यदि असावधानी है और अभिप्राय खोटा है तो वो क्रिया भी हिंसात्मक ही कहलाती है। सबसे कम हिंसा होती है शरीर से, उससे ज्यादा होती है वाणी से, और सबसे ज्यादा होती है हमारे मन से, हमारे भावों से। जिन जीवों के मन नहीं होता, ऐसे एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री जीवों के ज्यादा पाप नहीं होता। सबसे ज्यादा पाप करता है तो मन वाला जीव करता है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना कि जो बिना मन वाला है वो अपने आत्म कल्याण का विचार भी नहीं कर सकता, इसलिए उसे अपने मुक्ति का भी कोई साधन नहीं मिलता, उपाय नहीं उसके पास। मन वाले जीव को दोनों चांसेस हैं, दोनों अवसर हैं उसके जीवन में कि वो यदि अपने को संभाल ले, अपने परिणामों को, तो एक ऊंचाई पर भी पहुंच सकता है, और अगर वो अपने परिणामों को ना संभल पाए तो बहुत नीचे भी जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण इसलिए मनुष्य जीवन में हमारे अपने परिणाम, हमारा अपना अभिप्राय, उसी से पापों का जो वेटेज है, जो वजन है, वो नापा जाता है कि कौन सा पाप कितना भारी है, किस अभिप्राय से हमने क्रिया की है, इस पर निर्भर करता है। शरीर से इसलिए अल्प होता है क्योंकि शरीर से दूसरे का घात करने के लिए शरीर की सामर्थ्य चाहिए, लेकिन शरीर बलवान नहीं भी हो और वाणी से एक शब्द ऐसा कह दिया जाए जिससे कि दूसरे व्यक्ति को तकलीफ पहुंच जाए, तो वाणी से अधिक संभावना है पाप की। और मन ही मन दूसरे के घात का विचार कर लिया जाए तो और अधिक है। इसका एक छोटा सा उदाहरण जिससे अपन समझ लें कि क्या सचमुच ऐसा है या कि नहीं है। एक राजा ने दो अपने दूत दूसरे राज्य में भेजे इस बात की जानकारी के लिए कि वहां के लोग बहुत समृद्धिशाली और बहुत आयु वाले क्यों होते हैं, जरा पता करके आओ ताकि वही चीज हम अपने यहां पर और लागू करें। वो दोनों गए राजदूत और उस राजा से कहा कि हम आपके यहां ये पता करने आए हैं कि आप लोग इतने रिच कैसे हैं और इतने अधिक उम्र वाले क्यों हैं। राजा ने कहा कि आसान सा उपाय है, हम आपको बता देंगे। तो उन्होंने कहा कि कब बताएंगे। ये जो राजमहल के सामने वृक्ष लगा हुआ है ये जब सूख जाएगा तब बता देंगे। बड़े मुश्किल में पड़े वो राजदूत की कहां आके फंस गए, ये इतना हरा भरा वृक्ष कहां से कब सूखेगा और कब मुझे उत्तर मिलेगा और कब जा पाऊंगा, ये बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। उसी राजभवन में उन्हें रुकने के लिए कमरा दे दिया गया। वे दोनों उस कमरे में रुके हुए हैं, खिड़की खुलती है उसी वृक्ष की तरफ। एक एक दिन गुजर रहा है उनका, सब सुख सुविधाएं हैं उनको, लेकिन अभी जवाब जब तक नहीं मिलेगा तब तक लौट नहीं सकते, और जवाब तब मिलेगा जबकि सामने का वृक्ष सूख जाए। रोज सुबह दोपहर शाम जब जब भी खिड़की में खड़े होते हैं, वृक्ष को देखते हैं तो इंतजार करते हैं, विचार करते हैं कि कब सूख जावे और कब मुझे जवाब मिल जाए और कब यहां ऐसे लौट जाऊं। और आप आश्चर्य करेंगे, कहानी कितनी सही है हम नहीं जानते, लेकिन जीवन में ये सच्चाई हमारे देखने में हम चाहें तो देख सकते हैं। महीने भर के भीतर भीतर वो हरा भरा वृक्ष धीरे धीरे करके सूख गया। अब जब वृक्ष सूख गया तो अत्यंत हर्षित है। जितना जितना वृक्ष सूखता जाता है वे राजदूत उतने ही हर्षित होते हैं रोज। और एक दिन वो पूरा सूख जाता है, तब दरबार में जाके कहते हैं कि वो जो सामने का वृक्ष जिसकी की शर्त तय हुई थी कि सूख जाएगा तब आप जवाब देंगे, दे राजन जवाब ताकि हम लौटकर अपने राजा को बताएं कि क्या कारण है आपके यहां पर अधिक उम्र वाले और अधिक संपन्न लोगों के होने का। राजा ने कहा कि जवाब तो आपको मिल ही गया है। क्या जवाब मिल गया? राजा ने कहा कि देखते हो इतने वर्षों पुराना, इतना हरा भरा, उसका हरा भरापन ही समृद्धि है वृक्ष की, और उम्र उसकी इतनी थी, इतने वर्षों से जी रहा है और कितने वर्ष जीता, लेकिन सिर्फ तुम लोग रोज रोज ये दुर्भावना उसको देते रहे अपने मन से कि कब ये सूख जावे कब नष्ट हो जावे, उस दुर्भावना के फलस्वरूप असमय में ही वो नष्ट हो गया। हमारे देश के लोग समृद्धिशाली हैं और अधिक उम्र वाले हैं क्योंकि उनके मन में एक दूसरे के प्रति कलुषता और दुर्भावना नहीं है, वे एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखते हैं, ये कारण है। जाओ अपने राजा को बता दे। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, ये सिर्फ हमें ये संदेश देता है कि हमारे मन में उठने वाली दुर्भावनाएं और सद्भावनाएं वो हमारे और दूसरे के जीवन को प्रभावित करती हैं। इसलिए बहुत सावधानी है कि हम अपने अभिप्राय को, अपने मन को, अपनी भावनाओं को बचा करके रखें, वे कलुषित ना हो पाए। कोई व्यक्ति कितना भी बाहर से पापों से मुक्त हो जाए हो सकता है, लेकिन भीतर में अभिप्राय अगर वो खोटा है तो मानिएगा कि वो निरंतर पाप से लिप्त होता चला जाए। उसका अपराध बाहर में दिखाई नहीं पड़ता। अपराध वो कहलाता जो चार लोगों को दिखाई पड़ जाए, पाप वो कहलाता जो किसी को नहीं दिखता लेकिन भीतर हमारे संसार को बढ़ाने में कारण बनता। इतने ही अपराध और पाप में फर्क है, जरा सा फर्क है, बारीक। हिंसा हमारे अभिप्राय से ज्यादा होती है। आज कोई किसी से लड़ने नहीं जाता भैया, लेकिन मन ही मन दूसरे के घात का, जो दूसरे के प्रति दुर्भावना, बैड विशेष जिनको कहते हैं, मैंने इसका अपने जीवन में उदाहरण देखा। हम लोग ललितपुर चले जा रहे थे, 1987 की बात है, ललितपुर में वाचना के समय जब थुबोन जी का चतुर्मास करके, और हम उन दिनों खुरई में थे और आचार्य महाराज पूरे संघ सहित थुबोन जी का चतुर्मास करके और फिर चंदेरी होते हुए ललितपुर आए थे। शायद 88 हो, 87 का चतुर्मास हुआ था तो 88 जनवरी के लगभग की बात होगी, उसी समय की। तब रास्ते से चले जा रहे थे, बिहार करते हुए सारा संघ है, साधु जन चले जा रहे हैं, त्यागी वृत्ति भी हैं, और गर्मी का समय आ गया था, ठंड तो व्यतीत हो गई थी यहां पर चंदेरी में, और उसके बाद आचार्य श्री पहुंचे थे ललितपुर ग्रीष्म काल में। तो उसके पहले, महावीर जयंती के पहले हैं, हाँ उसके बाद की बात है, फिर सॉरी चंदेरी से उधर पहुंच करके फिर गए। तब उस समय जब विहार करके जा रहे थे, तब रास्ते में बहुत, उन दिनों में आम में मोर आती है, लग जाते हैं आम, छोटे 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 उसमें फल लगे हुए थे और पूरा वृक्ष लद गया था, जिससे कि झुक जाते हैं वृक्ष की डालें, झुक जाती हैं बोझ से, झुकी हुई थी दोनों तरफ रास्ते के लगे हुए हैं, उनको रखवाला रक्षा करने के लिए बैठा हुआ है, क्योंकि रोड साइड में है, बच्चे पत्थर फेंक के तोड़े ना, खराब ना करें। हमारे देखते देखते हम आश्चर्य करते हैं, अभी भी उसके पीछे का साइंस हमारे समझ में नहीं आया आज तक। हम दो तीन महाराज, योग सागर जी महाराज और समता सागर जी महाराज, हम तीन लोग थे, और हमारे आगे और कुछ त्यागी व्रति, और वो जा रहे हैं दो दो तीन तीन के ग्रुप में, और वो 10 कदम उस वृक्ष से आगे निकले हैं और हम 10 कदम उस वृक्ष से पीछे हैं, और इस बीच में उस वृक्ष की लदी फदी बहुत बड़ी सी डगाल टूट करके नीचे गिर जाए। हम लोग चकित हैं, वो पीछे मुड़ के देखते हैं, हम लोग तो 10 कदम आगे देख रहे हैं कि ये डगाल टूट के गिर गई, इतनी अभी क्या हुआ इसको। वो रखवाला कहता है, नजर लग गई, नजर लग गई, इतना ही कहता है दुखी होकर के। और वास्तव में वही चीज थी, कितने फरे हुए हैं, बाहर से शब्द ऐसा मालूम पड़ रहा जैसे प्रशंसा कर रहे हो लेकिन भीतर दुर्भावना है। हाँ ये ध्यान रखना, भीतर की दुर्भावना इतनी प्रबल है कि बाहर के कहे गए शब्दों की चोट की कितने फड़े हुए हैं, जिसका है उसका तो समझ लो कि ठाट है, उसके तो इस बार बहुत धन संपत्ति आएगी, उस धन संपदा से भीतर में ईर्ष्या हो गई है और वो ईर्ष्या जो है दुर्भावना बन करके उसको नष्ट करने में कारण बन गई। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि हम अपने मन को संभाल सके। क्रिया तो बहुत संभाली, जिंदगी से संभाल रहे हैं क्रिया, खूब संभाल ली क्रिया के क्रिया समझ जावे, लेकिन भाव संभाल लेते तो शायद आज तक हमारी स्थिति कुछ और होती, हम सबसे समृद्ध। क्योंकि जो मानसिक रूप से समृद्ध है वो वास्तव में समृद्ध है, फिजिकल वेल्थ तो पीछे छूट जाती है हमारे यहां से विदा होने पर, लेकिन जिसका मन जितना स्वस्थ है, जिसका मन जितना सद्भाव से युक्त है, वो अपने साथ लेकर के जाता है उन सब सद्भावनाओं को। इसलिए जब भी हम हिंसा पर विचार करें तो हम पहले अपनी भावनाओं को संभालने के लिए प्रयत्न करें, उसी से संबंधित है हिंसा और अहिंसा का गणित। आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम अपनी वाणी का उपयोग करते हैं, तब वाणी के साथ भी जरा सावधानी रखनी चाहिए। कि अभिप्राय खोटा ना हो, तो ही वो हमारी वाणी सार्थक होती है। खोटे अभिप्राय से जो भी हम बोलते हैं, क्रोध लोभ हास भीरुत्व प्रत्याख्यानानुचि भाषणम च पंच, सत्य का पालन करने वाले को बहुत सावधानी रखनी चाहिए, असत्य से बचने के लिए भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए। वो यही है कि क्रोध के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर, भयभीत होकर या हंसी मजाक करने की दृष्टि से कभी भी वचन नहीं बोलना चाहिए। अनुवीची भाषणम, बहुत सोच विचार करके इस वचन के बल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह वचन भी एक बल है, एक सामर्थ्य, एक शक्ति है। जैसे कि एनर्जी, एनर्जी जो है बुरी नहीं होती, एनर्जी को आपने किस काम में लगाया है उससे एनर्जी बुरी है या भली है ये डिसाइड होता है, वो भली बुरी नहीं होती। आप उसी शक्ति से कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं और उसी शक्ति से डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, रचनात्मक कार्य भी कर सकते हैं और विध्वंस भी कर सकते हैं। शक्ति एक ही है, हमारे पास वचन की शक्ति है, उस शक्ति से हम विध्वंस भी कर सकते हैं, अपना भी और दूसरे का भी, और उसी शक्ति से हम और अपनी और दूसरे के कल्याण और भले के लिए भी कुछ उपाय कर सकते हैं उस शक्ति के माध्यम से। आचार्य भगवंतों ने सत्य अनुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ति, इन सब के माध्यम से हमारी अपनी वाणी को नियंत्रित और संतुलित करने के लिए उपाय दिए हैं। इस एनर्जी को हाउ टू चैनलाइज इट, इसको कैसे चैनलाइज करें, जैसे कि बहती हुई नदी जो कि अपने किनारे तोड़ करके और फैल जावे तो सब तरफ त्राही त्राही मच जाए, और वही अगर चैनलाइज कर दी जाए कैनाल्स में कन्वर्ट करके तो वही खेतों को सींच करके और समृद्धि भी दे सकती है और वही विध्वंस भी कर सकती है। ठीक ऐसे ही हमारी इस वाणी को नियंत्रित और संतुलित करने के लिए आचार्य भगवंतों ने सबसे पहले ये कहा कि हो सके तो चुप रहना, सबसे पहले हो सके तो सबसे पहले चुप रहना। चुप रहने का आशय समझ लेना, पशु के समान नहीं बोलने का नाम मौन नहीं है, आगम सम्मत वचन बोलने का नाम मौन है, ये ध्यान रखना। नहीं तो जो एक इंद्री से लेकर के और असंगी पंचेंद्री अपने अपने आप को शब्दों के प्रयोग के नहीं कर पाते हैं, सिर्फ ध्वनि उनकी निकलती है, तो उनको तो बहुत आसानी से उनका कल्याण हो जाए। नहीं, वचन नहीं बोलने का अर्थ यही है कि मैं आगम के अनुकूल वचन बोलूं, सिर्फ इसके अलावा कोई वचन नहीं बोलूं, वही चुप होना है। मौन शब्द से बना है मुनि, जो पाप से मौन हो गया वो मुनि, जिसने पाप रूपी वचन भी बोलना, पाप रूपी चिंतन भी करना, पाप रूपी क्रियाएं भी करना छोड़ दिया है। तो सबसे पहले रखा कि वचन गुप्ति, अपने उस वचन को संभालना, वो सिर्फ आगम सम्मत ही वचन हो, जब भी बोलें वचन का प्रयोग करें। और फिर कहते हैं अनुव्रत और महाव्रत के रूप में उसी को व्याख्यायित किया गया है। अब ऐसा तो संभव नहीं है कि ना बोल सके, तो एक मुनि और एक गृहस्थ, इन दोनों के लिए प्रवृत्ति और निवृत्ति कैसे करें, इसका संतुलन बनाने की दृष्टि से भी अगर देखें तो क्या कहा, बोलना हो तो हित मित प्रिय वचन बोलना, ये हो गया भाषा समिति। और शावक को कहा कि तुमसे ना हो सकेगा तो तुम तो इतना ही करना, परबदकार कठोर निंद नहीं वचन उचार, दूसरे के घात करने वाले कठोर और निंदनीय वचन नहीं बोलना, यही तुम्हारा सत्य अनुव्रत है। और मुनि महाराज को कहा कि समस्त प्रकार के पाप वचन का त्याग कर देना, यही सत्य महाव्रत है। इस तरह से सब जीवों के लिए, जिनके पास की वचन की क्षमता है, उस वचन के सदुपयोग करने के लिए इस तरह एक व्यवस्था दे दी। चार प्रकार का असत हो सकता है, उसको हम समझ लें ताकि और थोड़ी सी बात क्लियर हो जाए। वो नाम तो जरा कठिन है। सत प्रतिषेध, जो है उसका निषेध करना, यह एक प्रकार का झूठ है। जो है उसका निषेध करना, कभी अगर पढ़ना हो और डिटेल में तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अमृतचंद स्वामी का पढ़ना, उसमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डिफाइन की गई। मैं तो बहुत शॉर्ट में अपनी भाषा में कह रहा हूं, जो है उसका निषेध करते हैं अपन बहुत बार। जैसे उदाहरण दिया है उसमें कि मनुष्य और तिरंचों की अकाल मृत्यु होती है, पर यह कहना कि नहीं होती, ये सत प्रतिषेध नाम का असत है। ये जो कहते हैं उदाहरण उसमें दिया, सैद्धांतिक। व्यवहार में तो सबको मालूम है कि जो चीज है हम उसका निषेध कर देते हैं, बहुत सहज है। ऐसा झूठ तो हम बहुत बार बोलते हैं। घर में मित्र आता है मिलने के लिए और मालूम है कि वो किताब मंगाएगा और अपने को देनी नहीं है, तो मां से कहलवा देते कि जब आवे तो कहना है नहीं, अपन तो पढ़ रहे ऊपर कमरे में। ऐसा तो कई बार कह देते, जो है उसका निषेध कर दिया। सैद्धांतिक रूप से लिखा है कि मनुष्य तिरंचों के अकाल में मरण हो सकता है, यह सिद्धांत है, लेकिन यह कहना कि नहीं हो सकता, यह सत प्रतिषेध नाम का झूठ या कि असत्य वचन है। फिर कह रहे हैं अभूत उद्भावन, जो नहीं है उसे कहना। और इसके लिए उदाहरण दिया है कि देव और नारकी जीवों की अकाल मृत्यु नहीं होती, तो उनकी अकाल मृत्यु मानना, यह कहलाएगा असत उद्भावन। जो नहीं है उसको कहना कि है ऐसा। ये भी सांसारिक रूप से तो बहुत उदाहरण है भैया, अपन सब तो सुबह से शाम तक यही तो करते हैं। जो है जैसा है वैसा कहां कहते हैं, अपन तो सिर्फ ऐसा बोलते हैं जिससे कि सच मालूम पड़े। सच हो इसकी जरूरत थोड़ी है, बस ऐसा मालूम पड़ना चाहिए कि सच है। धोखा देने वाला धोखा दे रहा है सदा से कि वो जो दे रहा है वो धोखा नहीं है। धोखा देने वाला धोखा दे रहा है सदा से कि वो जो दे रहा है वो धोखा नहीं है। ऐसा नहीं है कि खाने वाला बुद्धू है, धोखा खाने वाला धोखा खा रहा है सदा से कि वो जो खा रहा है वो धोखा नहीं है। धोखा धोखा होने के बाद भी फल रहा है, दोनों मजे में, दोनों का काम चल रहा है। संसार की तो यही स्थिति है, सब जानते हैं कि क्या चीज कैसी है। आज कितनी सारी चीजें हैं अपने सुबह से शाम तक डेली यूज में आने वाली, जिनके बारे में सच्चाई मालूम है, लेकिन डिनाइल ऑफ रियलिटी, उस वास्तविकता को हम इग्नोर करते हैं, उसको हम अनदेखा कर देते हैं। अरे ऐसा होता नहीं है, चाय में कोई चीज मिली, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं। किसी चीज में कोई चीज के बारे में पेपर में निकल जाए, कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में निकला था, थोड़े दिन तो चला मामला, फिर उसके बाद में कोई नहीं माना। फिर ये क्या चीज है? असत्य का समर्थन और सत्य का निषेध, और क्या चीज है? ऐसा दिन भर अपन करते रहते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने उस असत्य से, सत्य तो बोलना लेकिन असत्य से बच करके रहना, क्योंकि इसके पीछे अभिप्राय क्या है? कहीं ना कहीं कोई अज्ञानता या आसक्ति है, इतना ही है मन में। अज्ञानतावश भी हम असत्य बोलते हैं, और कई बार तो हम जानबूझकर अपनी आसक्ति की वजह से भी, लोलुपता की वजह से भी, जानते हैं कि ये चीजें अहितकारी हैं, उस पर लिखा रहता सिगरेट पर हार्मफुल इंजोरियस, अंतावश भी हम असत्य बोलते हैं, और कई बार तो हम जानबूझकर अपनी आसक्ति की वजह से भी, लोलुपता की वजह से भी, जानते हैं कि ये चीजें अहितकारी हैं, उस पर लिखा रहता सिगरेट पर हार्मफुल इंजोरियस फॉर द हेल्थ, सब पर लिखा रहता, लेकिन इसके बाद भी डिनाइल ऑफ रियलिटी, वास्तविकता से पलायन करना, इग्नोर, उसको अनदेखा करना, नहीं नहीं ये कुछ नहीं होता, सब लिखा हुआ होता। फिर आगे कहते हैं अनालोच, जो एक जाति का पदार्थ है, पशु हैं, पशु पशु हैं तो सबकी अलग अलग वैरायटी है, लेकिन एक दूसरे में गड्ढबंड करके बैल को घोड़ा कहना, घोड़े को बैल कहना, ऐसा कहता नहीं है कोई, कहता है क्या? ये तो एक उदाहरण दिया हुआ है, पर ऐसे और बहुत सारे उदाहरण हैं। एक ही जाति की चीजों को एक दूसरे में मिक्स करके अपन नहीं करते हैं, ऐसा झूठ। अरे भैया, मंदिर के बाजू वाली छत पर हम शुद्धि करने गए थे एक जगह, नाम नहीं बताएंगे स्थान का, सो वहां पर जो है शुद्धि करने गए तो वहां पर मिट्टी का बड़ी बारीक पीले रंग की बहुत बढ़िया मिट्टी का ढेर लगा था। हमने पूछा कि अरे, बोले महाराज जी दूसरे का घर है, अपन तो शुद्धि करने उनकी छत पे आ गए, क्योंकि मंदिर से लगी हुई है तो उनकी परमिशन रहती कि हाँ यहाँ से शुद्धि वगैरह कर दे, उनकी यहाँ पर ये मिट्टी सूख रही। हमने कहा मिट्टी सूख रही? कहते हाँ उनका हल्दी का धंधा है, हल्दी का पिसी हल्दी बेचते हैं। एक समझ में आ गया सबके, हमारे तो देर से आया था, हमें जी उपाय नहीं मालूम था कि ऐसा भी हो सकता है। आपके जल्दी समझ में आया, आपको मतलब इसका पहले से मालूम है कि ऐसा हो सकता है? एक ही जाति की कैसे लग रही है, वो भी पीले रंग की, ये भी पीले रंग की, और पीसने पर दोनों एक जैसी मालूम पड़ती हैं और एक दूसरे में आसानी से मिक्स हो करके, और हम इस तरह के झूठ में भी पड़ जाते हैं। अकेले बोलने का नहीं है, बोलते तो बाद में है, कर तो पहले लिया, फिर बाद में कहते कि हल्दी है, हल्दी मिट्टी नहीं है, हल्दी है। वो बिकती भी उसी भाव से है, हल्दी के भाव से, मिट्टी भी रंग एक सा है इसलिए उसमें मिक्स कर दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें मिक्स कर दिए आती, वो सब इसी झूठ के अंतर्गत आते हैं। पता नहीं लगता अपने को, अपन कहां, आज तो दिन भर में हम कोई से बिल्कुल बोले ही नहीं है, आज हमने बिल्कुल झूठ तो संभाल ही नहीं उठता। अच्छा, और जब वो सामान बेच रहे थे तब लाए कितने की थी और बोली कितने की थी, बचाए कितने थे, सब में सुबह से शाम तक जितना भी, क्योंकि अभिप्राय उसके पीछे खोटा है तो क्रिया जो चलती रहती सब झूठ ही होता रहता पूरा जीवन। अगर कभी कभी बहुत बेचैनी होती है, कभी आप विचार करेंगे, मैं तो कभी विचार करता हूं तो एक बार लगता है कि ऐसा लगता है जैसे पूरा जीवन झूठ पर खड़ा हुआ, किस दिन भर भरा करके गिर जाएगा, कहां नहीं जा सकता, कई बार ऐसा लगने लगता। आप विचार करिए कि सुबह से शाम तक सारी क्रियाओं में सच्चाई कितनी है, कितना झूठ पर हम खड़े हुए हैं और उसी से हमारा जीवन, और हम जीते रहते। आखिरी में कहते कि असुनृत, असुनृत के अंतर्गत रखा निंदनीय, गर्हित और अप्रिय वचन बोलना, ये भी झूठ में शामिल है, असत्य में शामिल है। चार प्रकार के असत्य, उसमें से अपन कितने प्रकार से बच सकते हैं बहुत मुश्किल है। लगता तो यह है कि चुप रह जाना चाहिए, लेकिन चुप रहने अकेले से नहीं बनता, क्योंकि अभिप्राय में तो पड़ा हुआ है, अभिप्राय को ठीक करना पड़ेगा। तब सबसे अच्छा है कि भीतर अभिप्राय भला हो, बाहर में टू द पॉइंट बोला जाए और बोलते समय वाणी की मधुरता बनी रहे। ये तीन बैरियर अगर हमने लगा लिए हैं तो फिर देखिएगा कि हमारी वाणी हमारे और दूसरे के जीवन को अच्छा बनाने में कारण बने बिना नहीं रह सकते। इतना सा ध्यान में रखते, तीन ही चीजें बहुत आसान कर दी आचार्य भगवंतों ने। कह रहे हैं कि भीतर में अभिप्राय भला रहे, प्रयोजन हमारा बोलने का भला है, इंटेंशन हमारा बहुत अच्छा है, हम किसी का बुरा चाहने के लिए वचन नहीं बोले। पहले नंबर कि मैं बोलूंगा तो सच बोलूंगा, अभिप्राय मेरा झूठा नहीं होगा, और सच बोल रहा हूं और अभिप्राय भी ठीक है, लेकिन संभव है कि परिणाम ठीक ना निकले तो मैं पहले से परिणाम को थोड़ा सा कैलकुलेट कर लूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बात कहने से, जबकि मैं सच कह रहा हूं और ये जो बात मैं कह रहा हूं मेरा अभिप्राय भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके रिजल्ट जो है वो हो सकता है कि गड़बड़ा जाए, तो पहले से परिणाम का विचार करके फिर बोलता है कि अगर परिणाम ठीक नहीं निकलेगा तो भी मैं चुप रह जाता हूं, सावधानी से बोलूंगा, बोलना तो है, सच भी है, मुझे इस व्यक्ति से सच से इसको परिचय भी करवाना, लेकिन समय देख करके। जैसे कि विश्वनाथ ने अपने बेटे नरेंद्र को एक दिन मां से कठोर वचन कहते हुए देखा तो बड़े विचलित हुए कि मेरा बेटा अपनी ही मां से कठोर वचन बोलता है, अब कैसे समझाया जाए। सच्चाई सच्चाई तो उनको मालूम है और कहना चाहें तो उसी समय कह सकते थे कि ए मिस्टर, मां है तुम्हारी, ठीक से बोला करे, कह सकते थे, लेकिन अभी नहीं, अभी इसका परिणाम ठीक ना निकलेगा। बेटे को भला बनाने का विचार भी है, प्रयोजन अच्छा है, और तुमने कठोर वचन बोले हैं ये कहना भी सच ही है, लेकिन परिणाम ठीक नहीं निकलेगा, अभी 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 कह के और बाहर गया है, जाने दो, अभी मत टोको। शाम को जब अपने चार मित्रों के साथ नरेंद्र लौट कर घर आते हैं तो दरवाजा खोलते हैं अपने कमरे का, तो उस पर एक बड़ा सारा कागज चिपका हुआ है जिस पर क्या लिखा, आज नरेंद्र ने अपनी माँ से कठोर वचन बोले, क्या नरेंद्र का यह व्यवहार ठीक है। बस चार मित्रों के साथ जब उन्होंने वो पढ़ा, 11 साल के हैं, 11 साल का बेटा पढ़ता है, कागज पे लिखा हुआ है, पिता के हाथ की लिखाई है, पढ़ते हैं तो अपन उसके मालिक नहीं है, मालिक तो वो है जो उसका सदुपयोग करे, वरना तो गुलाम है वो, हम शरीर के गुलाम हो जाते हैं अगर शरीर का सदुपयोग नहीं करते, वाणी का सदुपयोग नहीं करते। ये सब चीजें हमें मिली हुई हैं, इनके हम मालिक तब कहलाएंगे जब हम इनका सदुपयोग करते हैं। अब समझ गए वो कि ये तो घात करेगा, क्या करें, अब झूठ बोला नहीं जा सकता, झूठ बोलने का आजीवन का त्याग है, और सच बोलेंगे तो परिणाम ठीक नहीं लगे निकलेगा। तब फौरन महाराज बैठे हुए थे, खड़े हो गए, खड़े होकर के बोले कि भाई मैं जब से यहां खड़ा हूं तब से तो मैंने किसी गाय को यहां जाते हुए नहीं देखा, मैं बैठा हुआ था तब निकली हो तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं जब से यहां खड़ा हूं तब से मैंने किसी गाय को यहां जाते हुए नहीं देखा। ये वचन बोलने के पीछे सावधानी का उदाहरण है कि कितनी अवेयरनेस है कि हम कैसे दूसरे के प्राणों की भी रक्षा करें और हम भी झूठ से लिप्त ना हो पाए, हम सच हमेशा हमारे वाणी में और हमारे जीवन में बना रहे। अगर इस तरह हम अपनी वाणी को एक अच्छी दिशा दें और अपने अभिप्राय के अनुसार अपने अभिप्राय को अच्छा बना करके और फिर वाणी बोलें तो हमारी वाणी उपकार करने वाली होगी, हमारा भी और दूसरे का भी, और इस तरह हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। इसी भावना के साथ कि हमारा जीवन अच्छा बने, बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर।